Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
नमस्कार मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
वार्म वेलकम सिद्धार्थ.
गुड इवनिंग आप दोनों को.
स्वागत के साथ अब हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और नजर डालेंगे मुख्य समाचारों पर जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख.
मेजर एशियन स्टॉक मार्केट्स एंड विद गेन्स. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉल एंड इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस राइज.
एशिया के प्रमुख शेयर बाजार लाभ के साथ हुए बंद. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत घटे और सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की चमक तेज हुई.
Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
पहले चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर. नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर जहां कुल मिलाकर आज खरीदारी तेज रही. प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए. निवेशकों की खरीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.7% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ. जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 2.4% से अधिक तेजी देखने को मिली. चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लगभग 1% लाभ में रहा. हांगकांग के हेंगसेंग में 0.8% से अधिक की वृद्धि रही. सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स भी लगभग 0.5% बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी तेजी चल रही थी. जर्मनी का डेक्स 1% से ऊपर. फ्रांस का कैक 40 0.6% से अधिक और लंदन का फुटसी 100 मामूली बढ़त के साथ समाचार तैयार किए जाने तक चल रहे थे.
US indices ended with gains yesterday as investors shrugged off the breakdown in peace talks between the US and Iran and remained optimistic that a deal between the two countries was still possible. The Nasdaq Composite Index climbed over 1.2%, the S&P 500 surged 1%, and Dow Jones Industrial Average gained over 0.6%. So Siddharth, there is still optimism left in the economies, particularly US is kind of showing that it's gone up by, like the Nasdaq has gone up by over 1.2% in the hope that the two countries can still reach a compromise.
Yes, Rajesh, I think and the indications that we are getting also is that Iran is also ready to, you know, come back to the table, and so probably that is what is reflected in the markets across Europe, Asia and US. And I think even in the Indian markets, I think though they had opened immediately after the talks had failed, so on the weekend, close to the weekend, so I think Monday obviously we saw a fall in Indian market, but it was also not to the extent which we had been seeing earlier. And if you were to ask me, I would say yes, we are. I think in my personal view, I think we are very close that both the sides would reach an agreement, and the latest news that is coming in is that Iran is now ready to, you know, stop any movement of ships as a signal, as a positive signal to the US that they are ready to come and, you know, do a deal or reach an agreement with the United States.
So hopefully, as you said, things should come to a handshake at least. So with recurring geopolitical flare-ups and the shifting Fed expectations, how do you expect the markets to behave in the long term? Of course, this is based on the fact that, as you said, an agreement would have reached by now.
See, Rajesh, if your question is directed to the Indian markets, I would say I think we have seen the worst. In my view,
actually, why Indian market? The world has seen the worst.
Yeah, so that is why you are seeing that optimism, or so because the worst is behind us. So I think that is why that optimism is there, that it can't be worse than this. So and that is building in now. And if we see even the last week Indian markets, so I would say if empirically also, if you look at good stocks which are in the Nifty or in the Sensex, one can easily see an upside of 6-7% at least. There are some stocks which have even gone beyond that. So I think the worst is behind us, and as I always say, this I think the best time to come to the markets, invest. Obviously, yes, this time because of this disruption in the energy supplies, and obviously the Hormuz, the Strait of Hormuz, its role and our dependence on West Asia. So all, and not only our dependence, I think the world over. So I think the entire energy supply scenario or the ecosystem may take a reset, and it may be a little long haul for us also for our energy supplies to stabilize.
So what's your base case for the rupee? Range bound stability or bouts of sharp volatility?
See, Rajesh, if you look at past 10 days, the way RBI intervened in the onshore and the offshore markets, I think it was basically the volatility in rupee or the fall in rupee was not reflecting its real value, and that is why RBI intervened heavily and came and we also saw that post RBI's intervention rupee has appreciated to a great deal. So that, and it was all basically primarily based, the fall or the depreciation or the steep depreciation, I would say, was based on, basically was a result of heavy speculation in the market. So, and I think RBI took that step and has sent that message also, and the RBI governor in its post monetary policy interaction also said that they don't chase a level for rupee, but yes, we are there to contain extreme volatility, and that is what they have done. And plus, he also said that the steps they have taken are only for a short duration, and as things improve, they may be also withdrawn.
So since we're talking about the global risk off episodes, how sensitive are foreign portfolio flows into India because of this versus India's own growth and earnings story?
See, Rajesh, as far as foreign portfolio FPIs have been there, we have been seeing since Donald Trump came to power as president in US, we have been seeing the issue of tariff that also precipitated the exit of FPIs, and on a regular basis for the entire last year we have seen a huge withdrawal from FPIs. And yes, and March was obviously one of the worst months, especially because of the West Asia crisis. But now I see the levels in the Indian markets are again attractive. I think they should come to India. Obviously, the other factors that are also affecting, as you said, obviously our growth forecast remains. We still are expected to grow at 7%. Our fiscal deficit, we've been very prudent in last 4-5 years. Our forex reserves are very good. And also another heartening factor, which I think our own domestic demand, it's almost our own GDP is almost 55% of our domestic demand. Plus you see the government's focus on infrastructure, on bringing in new reforms, policy reforms in terms of improving GST rates, income tax rates. So I think several initiatives, even in the budget, the focus on rare earth, and then building fast train corridors. So, and obviously airports, ports, I think so all that our focus has not deviated even a single bit. Yes, obviously now we are also responding to the evolving situation in West Asia. There will be pressure in terms of high energy cost for us. As of now, government is kind of completely absorbed the entire cost, and they've cut taxes also on a lot of chemical, petrochemical items, including petrol, diesel, excise duty was cut. So I think there would be some impact in terms of our fiscal cost of the energy, which obviously, and that would affect is affecting everybody. So we are not an exception to that.
आइए श्रोताओं को लिए चलते हैं घरेलू शेयर बाजार की ओर, जहां आज कारोबार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बंद रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेन देन, करेंसी डेरिवेटिव्स और ब्याज दर डेरिवेटिव्स आदि सेगमेंट में कोई कामकाज नहीं हुआ। कल घरेलू शेयर बाजार लगभग 1% घाटे के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स 703 अंक घटकर 76,848 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 208 अंक घटकर 23,843 पर बंद हुआ। नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर, जहां आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय मुद्रा बाजार तो बंद रहे, लेकिन दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में 98.03 पर समाचार तैयार किए जाने तक चल रहा था। यहां पर सिद्धार्थ जी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समझना चाहेंगे कि यानी आपने उम्मीद जताई कि सबसे जो यानी बुरी स्थिति हो सकती थी बाजार की दृष्टि से, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की दृष्टि से, हम संभवतः उससे पार निकल आए हैं, लेकिन जो हमने जहां तक नुकसान किया उसके बाद आने वाली स्थितियां जैसी हैं, और इस वर्ष, इस पूरे वर्ष को यदि हम आकलन करें तो पहले टैरिफ को लेकर आशंका, उसके बाद पश्चिम एशिया को लेकर आशंका, और अमेरिका की ही दृष्टि में देखें तो वहां के राष्ट्रपति की जो मनोदशा रहती है उसमें जो क्यूबा को लेकर उन्होंने अगले ही संकेत कुछ अवसरों पर खोले हैं, वैसे देखते हुए भारतीय शेयर बाजार जो लगातार पिट रहा है उसमें शेयर बाजार के जो हमारे छोटे निवेशक हैं उनको हौसला किस रूप में देना चाहेंगे?
नहीं देखिए मनोज जी, अगर इसका जवाब देने के लिए मैं आपको पीछे ले जाऊं थोड़ा सा, तो अगर आप देखेंगे भारतीय जो स्टॉक मार्केट का अगर इतिहास देखेंगे या हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, तो आज हमारी बाजार तकरीबन 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो गया। तो जो अभी जो गिरावट आई उसके बाद कम हो गया होगा थोड़ा, और आपकी इकोनॉमी जो है हम फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और ये पिछले 10-15 साल की कहानी है। तो और आने वाला समय में मुझे लगता है अगले 10-15 साल में जो है हिंदुस्तान 16-17 ट्रिलियन इकॉनमी होगी, आपकी मार्केट कैप हो सक मुझे लगता है 20 ट्रिलियन होगी। तो जो यात्रा है वो मुझे लगता है ऊपर ही है, आगे ही बढ़ना है। हाँ, ये बीच में जो आप इनको कह सकते हैं इस तरह के जो स्पीड ब्रेकर कह लें या हाँ या झटके कह लें या कुछ गड्ढे या रोड ब्लॉक्स आएंगे, और आए भी हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। आप पहले देखेंगे 2007-09 ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आई, 2013 में ऐसा आया दुनिया में जो मंदी आई, उसके अलावा आप देखेंगे कोविड का इतनी बड़ी समस्या आई, फिर जो आपने बात कही टैरिफ की, और उसके बाद जो वेस्ट एशिया की क्राइसिस, और जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि ट्रंप साहब का जो एक दुनिया को जब से हुआ है अनसर्टेनिटी का जो जी, एक जी, जी। मतलब अनसर्टेनिटी इज मोस्ट सर्टेन नाउ। तो मुझे लगता है कि, और मुझे इस पे कोई भी वो नहीं है गुरेज ये कहने में कि हो सकता है अब अगला कुछ जैसे ही ये लड़ाई खत्म हो वो कोई और नई चीज लेके आ जाए जिससे दुनिया को फिर वो अस्थिर करने की कोशिश करें। लेकिन ये सब चीजें तो एक तरफ हो गई मनोज जी, लेकिन अगर आप हमें देखें, आप 2014 में जब हम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब ये सरकार बनी, तो ये उस समय ये कहा जाता था कि हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में हैं, हमारे यहाँ पॉलिसी पैरालिसिस है। उसके बाद सरकार ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए, आपके बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं थी, आज हमारे बैंक बहुत साउंड हैं, हमारी फिजिकल कंडीशन बहुत साउंड है, और वही शायद इस वही यही वजह है कि आज इस तरह की इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन को भी हैंडल कर पा रहे हैं। तो और आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार ने फोकस किया, फिर हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के, तो मुझे लगता है कि जो आपने सवाल पूछा जो निवेशक के हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में ऐसा कुछ भी पिछले 1.25 साल में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से निवेशक में कोई निराशा होनी है, और शायद है भी नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत जो मार्केट में हम गिरावट ज्यादा देख रहे हैं वो ऑब्वियसली एक जो हमारा वो है प्लस इमीडिएट रीजंस, कभी वेस्ट एशिया हुआ, टैरिफ हुआ, और एफआईआई का बहुत भारी मात्रा में विड्रॉल भी हुआ. लेकिन मैं उसका एक पॉजिटिव साइड भी आपको बोलना चाहता हूं, जो मैं मतलब हमेशा बोलता भी हूं कि आपने एफआईआई को इतने भारी मात्रा में प्रॉफिट बुक करके ले जाने दिया, आपका रुपए प्रेशर में है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कोई कैपिटल कंट्रोल्स नहीं लगाए, और उसके साथ भी हम इतने हाई एनर्जी कॉस्ट के साथ भी हम सर्वाइव कर रहे हैं, और हमारे पास कैपेसिटी है टू डील विद दिस सिचुएशन. तो मुझे लगता है ये बहुत बड़े पॉजिटिव्स हैं, $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व. और एक और बात आपसे मतलब यहाँ पे मैं सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि एक समय पे जो हमारे पुराने RBI गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने मतलब एक बात कही थी कि हमारे पास इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व ये इस दिन के लिए रखा है, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे. मतलब उन्होंने उनका एक टाइम पे ये भी एक इशू आया था कि क्या RBI बहुत ज्यादा इंटरवेंशन कर रहा है, तो उन्होंने उसका बचाव इस तरह से किया था कि जो छाता है वो जब बारिश होती है तो वो छाता इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है, ना कि उसको बंद करके रखा जाए. तो शायद तो मुझे लगता है कि आप पिछले एक सवा महीने का भी अगर आकलन करेंगे तो चाहे LPG की सिचुएशन हो, चाहे गैस की सिचुएशन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, आप यूरोप हो, एशिया हो, अमेरिका तक में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, गैस के कीमतें, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इन चीजों को एब्जॉर्ब किया है, और मुझे लगता है सरकार के पास कैपेसिटी है टू डील विद दिस सिचुएशन. और अगर ये वॉर ऐसा जो प्रतीत हो रहा है अगर जल्दी खत्म हो, तो हो सकता है क्योंकि अभी साल की जस्ट शुरुआत है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ग्रोथ पे ना आए. इन्फ्लेशन जरूर थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बट मुझे लगता है वो बैंड जो है 4% का, उसके उसमें हम मैनेज कर ले जाएंगे. जी
सर, हाउ फ्रेजाइल इज द मार्केट सेंटिमेंट राइट नाउ सिद्धार्थ, बीनीथ द हेडलाइन इंडिसेस?
I don't think it is fragile. I am Rajesh, very optimist, and I think if the optimism is also coming from the kind of investment you are seeing. If you look at the latest numbers from the AMFI in terms of investments coming into mutual funds, investment coming into SIPs, the ETFs, and also directly into the markets. So domestic institutional investors, retail investors are actually pumping in more money than what the FII withdrawal is. So and I think what has also happened over last 10-15 years, that fear of FIIs withdrawing and our markets tanking, I think we have also overcome that fear also. So I see a lot of optimism, and even in last 1 week when we have seen growing sense of war ending, the positiveness which has returned to the market, and it is being reflected in certain shares. If you look, I don't want to mention them, but I'm easily seeing people making at least 7-8% of what they have invested over last 1 month.
So inflation is still the primary risk, which is flagged by the RBI also, especially with the elevated energy prices. How constrained is monetary policy space right now?
See, I don't think it's constrained at the moment, and that is why they have maintained the neutral stance. And also, if you look at the RBI guidance in the monetary policy, they have said they should be able to manage inflation somewhere a little over 4%, the average inflation for the current financial year. So I don't think as of now there is any constraint, because RBI, as if you read the contents and the comments of the governor, Mr. Sanjay Malhotra, I think RBI is still in favor of pushing growth, and I think they are very confident of maintaining inflation within that around that 4% band.
यहाँ पर एक बार फिर से हम रुपए की ओर लौटना चाहेंगे और डॉलर के साथ उसको जोड़ते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा परिदृश्य है वहां आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे. हमने एक दौर देखा जब यूरो निकलकर सामने आया था कि डॉलर के पैरेलल कोई मुद्रा खड़ी हो सके, उसकी कोशिश हुई. इसके अलावा हमने विभिन्न अवसरों पर देखा आपसी मुद्राओं में लेन देन हो, लेकिन फिर इस पश्चिम एशिया युद्ध के बाद डॉलर की महत्ता क्या एक बार फिर से पूरी दुनिया के कारोबार पर स्थापित होती दिख रही है आपको?
नहीं मनोज जी, देखिए अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था कि जब डॉलर की जो है जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो अंडर क्वेश्चन आई हो. हाँ जरूर है, ऐसे पहले यूरो आया और समय समय पे ऐसे अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, जैसे उनको ये भी लगता है कि हम एज ब्रिक्स जो हमारा एक गठजोड़ है वो जो देशों का, उसमें उनको लगता है कि हम ब्रिक्स की कोई करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं डॉलर को चुनौती. बट अभी भी कहीं ना कहीं एक बात जो सर्वमान्य है वो ये है कि डॉलर की एक्सेप्टेबिलिटी एज अ मीन्स ऑफ ट्रेड मतलब उस पर कोई अथॉरिटी कोई क्वेश्चन है नहीं, तो इसीलिए मुझे लगता है अभी हाँ हम लोग भी अपने रुपए का चलन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रुपी ट्रेड अपने जो आसपास के देश हैं उनके साथ करने की हमने जो है प्रयत्न भी किया है और हमने उसको किया भी है, कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस आई है इससे भी मुझे लगता है इन सब एफर्ट्स को थोड़ा सा हो सकता है इनको थोड़ा सा पुशबैक मिले, लेकिन हाँ हम अपने रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन करने के पूरे जो उसका उस पथ पर अग्रसर हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता आने वाले समय में अभी हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं कहीं डॉलर को कोई चुनौती होने वाली है।
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सालों भर पर्यटन को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने शीतकालीन पर्यटन, शीतकालीन खेलों और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए गंतव्य के रूप में राज्य की बढ़ती लोकप्रियता पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए आज कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष के 12 महीने में पर्यटन गतिविधियां जारी रहना काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने राज्य को होने वाले आर्थिक लाभों का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से आतिथ्य, परिवहन और अन्य स्थानीय सेवाओं से जुड़े लोगों की आमदनी में काफी वृद्धि होती है। उन्होंने आगामी कुंभ मेले का भी जिक्र किया और कहा कि धार्मिक अवसरों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उत्तराखंड आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यटन को बनाए रखने और राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा दिल्ली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरता है। लगभग 213 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के निर्माण पर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इसके बन जाने से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय वर्तमान के 6 घंटे से घटकर लगभग 2.5 घंटे के आसपास रह जाएगा। कॉरिडोर को विशेष रूप से मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें लगभग 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर शामिल है जो एशिया में सबसे लंबे इस तरह के कॉरिडोर में से एक है। यहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे, उत्तराखंड को के गठन के बाद से जिस रूप से वहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है किस रूप में बदलाव आ रहा है?
नहीं देखिए, एक तो ऑब्वियसली जाना आसान होगा क्योंकि इस कॉरिडोर पे बहुत समय तकरीबन पिछले 5 साल से काम चल रहा था और ये बहुत दिन से ये बिल्ट इन था कि ये जो है जल्द से जल्द ये जो कॉरिडोर है खुले। और जो बात आपने आखिरी में बोली कि जो एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट उसको भी बहुत ध्यान में रखते हुए एक ऊपर से जो बनाया गया है एलिवेटेड कॉरिडोर, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये अलग, ये इसके साथ साथ ऑब्वियसली उत्तराखंड में चूंकि बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन का बहुत बड़ा वो है, डेस्टिनेशन है, खासकर ये जो गढ़वाल जो देहरादून की साइड जोड़ेगा, जो गढ़वाल उत्तराखंड का जो गढ़वाल पार्ट है। और एक और इसमें मुझे लगता है जो इसकी जो मैं एक स्ट्रैटेजिक महत्वता ये भी देखता हूँ, इससे हमको चाइना के बॉर्डर तक पहुँचने में भी कहीं समय में जो कमी होगी क्योंकि हम लोग कुछ एक नई रोड पिथौरागढ़ तक भी बना रहे हैं ताकि हमारे जो भी री इन्फोर्समेंट्स हों या जो हमारे डिफेंस की जो ज़रूरतें हैं उनको हम जल्द से जल्द चीन के बॉर्डर तक आसानी से पहुँचा सकें।
आइए आगे बढ़ें। सरकार ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की अधिसूचना जारी की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत निवेश वैकल्पिक निवेश कोष पर केंद्रित होगा। ये डीप टेक स्टार्टअप और प्रारंभिक विकास चरण सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का समर्थन करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि परिचालन दिशा निर्देश और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कमेटी की संरचना उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि लघु उद्योग विकास बैंक SIDBEI अधिसूचना की तिथि से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में योजना का संचालन शुरू करेगा। ये योजना देश के नवाचार आधारित विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही आर्थिक मजबूती बढ़ाने, विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने, उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करने और भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में योगदान देगी।
Moving on, the International Energy Agency, IEA, has stated that demand for crude oil will likely see its biggest slump in the second quarter Q2 of this year since the COVID-19 pandemic. In its April oil market report released today, the agency said global oil demand is expected to contract by 80,000 barrels per day this year. In Q2, demand is expected to drop by 1.5 million barrels per day, MBD, which would be the biggest fall since the COVID pandemic. The report attributed the decline largely to oil flow disruptions caused by West Asia conflict and its impact on the global market economy. The report also highlighted that global oil supply plummeted by 10.1 million barrels per day to 97 MBD in March, with continued attacks on energy infrastructure in West Asia and ongoing restrictions on tanker movements through the Strait of Hormuz, leading to the largest disruption in history. The report noted that while the announcement of a two-week ceasefire in the conflict last week provided some respite to global oil markets, it remains unclear whether the ceasefire will lead to lasting peace and a return to regular shipping flows through the Strait of Hormuz. So what is your take, Siddharth, on the biggest slump that IEA has is reporting in the second quarter, and also that newer ways of energy utilization is coming by way of electric power and some of the instruments that are coming in from China, which saves a lot of energy?
See, Rajesh, I think this report came in yesterday, and obviously not only the demand will go down, I feel obviously when there will be a supply disruption, so that also obviously will bring down demand, and along with that, obviously whenever such events happen, obviously the consumption goes down, the demand, obviously the growth goes down, so which brings down the demand. And as you also referred to China, I think obviously now countries, as I said earlier also in the program, the countries will have to look at diversification in their energy sources in terms of contracting energy supplies as well as newer forms of energy. And to give an example of China, I think they have moved almost 40% of their oil needs are met through the domestic production, and the new EV production, and in terms of
adoption to EV vehicles
is almost the registration of new vehicles is almost at 50% is EV.
Okay.
So I think similarly, I think countries across the globe would be making new strategies.
Global crude oil prices fell today as hopes of further peace talks between the US and Iran eased concerns about supply disruptions. Brent crude was trading over 0.6% down at $98.72 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading over 1.9% lower at $97.16 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading with marginal hike at 1,52,210 rupees per 10 grams, while silver was trading flat at 2,41,460 rupees per kilogram a short while ago.
आइए आपको लिए चलें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.6% बढ़त के साथ 1,52,979 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. उधर मई में आपूर्ति वाली चांदी 2.6% बढ़त के साथ 2,47,265 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी. कॉमेक्स में मई में आपूर्ति वाली चांदी के दाम 2.5% से अधिक बढ़त के साथ $77.64 प्रति ट्राई ऑन्स पर थे. वहीं जून आपूर्ति वाला सोना 0.5% बढ़त के साथ $4,792 प्रति ट्राई ऑन्स पर चल रहा था. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत सिद्धार्थ जी धन्यवाद.
थैंक यू सिद्धार्थ फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, major Asian stock markets end with gains, global crude oil prices fall, and in bullion markets, gold and silver prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.